भारतीय कला। मानव जीवन में कला का महत्वपूर्ण स्थान है। कला शब्द संस्कृत की कल धातु में कच तथा टाप, कल धन कच धन टाप लगाने से बनता है। संस्कृत कोट में यह शब्द विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, जैसे किसी वस्तु का छोटा खंड, चंद्रमा की एक रेखा, शोभा, अलंकरण, कुशलता अथवा मेधाविता आदि। किंतु इतिहास तथा संस्कृति में कला से तात्पर्य सौंदर्य, सुंदरता अथवा आनंद से है। अपने मनोगत भावों को सौंदर्य के साथ दृश्य रूप में व्यक्त करना ही कला है। आचार्य छेमराज के अनुसार अपने स्व किसी न किसी वस्तु के माध्यम से व्यक्त करना ही कला है, और यह अभिव्यक्ति चित्र, नृत्य, मूर्ति, वाद्य आदि के माध्यम से होती है। इस प्रकार कला मनुष्य की सौंदर्य भावना को मूर्त रूप प्रदान करती है। वस्तुतः कला का उद्गम सौंदर्य की मूलभूत प्रेरणा का ही परिणाम है। प्रत्येक कलात्मक प्रक्रिया का उद्देश्य सौंदर्य तथा आनंद की अभिव्यक्ति होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा इस रूप में उसे अपनी भावनाओं तथा विचारों का प्रत्यक्षीकरण करना पड़ता है। यह प्रत्यक्षीकरण अथवा प्रकटीकरण कला के माध्यम से ही संभव है। प्राचीन भारत में कला को साहित्य और संगीत के समकक्ष मानते हुए मनुष्य के लिए उसे आवश्यक बताया गया है। भर्तृहरि ने अपने नीति शतक में स्पष्टतः लिखा है कि साहित्य, संगीत तथा कला से हीन मनुष्य पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान है। साहित्य, संगीत, कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। भारतीय परंपरा में कला को लोकरंजन का समानार्थी निरूपित किया गया है। क्योंकि इसका एक अर्थ कुशलता अथवा मेधाविता भी है, अतः किसी कार्य को सम्यक रूप से संपन्न करने की प्रक्रिया को ही कला कहा जा सकता है। जिस कौशल द्वारा किसी वस्तु में उपयोगिता और सुंदरता का संचार हो जाए, वही कला है। भारतीय कला का इतिहास अत्यंत प्राचीन तथा गौरवशाली है। वस्तुतः यह कला यहाँ के निवासियों के विचारों को समझने का एक सबल माध्यम है। भारतीय कला के स्रोत। कला के अध्ययन के लिए प्रायः उन्हीं स्रोतों का उपयोग किया जाता है जो इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी हैं। इन्हें इस प्रकार रखा जा सकता है। साहित्य, वास्तु या स्थापत्य के विविध तकनीकों तथा भवनों के नाना रूपों पर प्रचुर विवरण वैदिक साहित्य से लेकर संस्कृत प्राकृत साहित्य में प्राप्त होता है। हमारे प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद में धार्मिक तथा लौकिक दोनों प्रकार की वास्तु का उल्लेख हुआ है। संहिताओं के अध्ययन से कुछ ऐसे शिल्पों के विषय में पता चलता है जो भौतिक सामग्री के माध्यम से बनाए जाते थे, क्योंकि इस काल में भवनों का निर्माण घास, फूस, कच्ची ईंटों, काष्ठ आदि से होता था, अतः वे शीघ्र विनष्ट हो गए और संप्रति उनके नमूने नहीं मिलते हैं। किंतु साहित्य के अनुशीलन से पता चलता है कि काष्ठ शिल्प अत्यंत विकसित अवस्था में था। बड़े वृक्षों को काट छांट कर भारी भारी महल भी बनाए जाते थे, जिन्हें सहस्त्र स्थूण प्रासाद कहा गया है। भवन स्तंभों पर टिके होते थे, जिन्हें स्कंभ कहा गया है। वैदिक देवता इंद्र को स्कंभी या सर्वोत्तम खंभे का स्वामी कहा जाता था। एक स्थान पर मजबूत आधार पर गाड़े गए 3 खंभों का उल्लेख मिलता है। 100 खंभों वाले शतभुजी भवनों का भी उल्लेख मिलता है। त्रिभुमिक प्रासाद अर्थात 3 खंडों में बने हुए महलों का भी वर्णन मिलता है। उल्लेखनीय है कि बड़े घरों का निर्माण भी काष्ठ से ही किया जाता था। नगर सन्निवेश का विवरण भी वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है। इस प्रकार कुछ पाश्चात्य विद्वानों की यह धारणा सही नहीं है कि वैदिक साहित्य में वास्तु विषय सामग्री नहीं मिलती। पर्सी ब्राउन ने उचित ही सुझाया है कि सांची एवं भरहुत की वेदिकाएं वैदिक वेदिका का अनुकरण मात्र हैं। अथर्ववेद में गृह निर्माण संबंधी 2 शाला सूक्त प्राप्त होते हैं। इनसे सूचित होता है कि विभिन्न बांसों को रस्सियों से बांधकर छाजन बनाए जाते थे। छप्पर या बांस पट्टियों को रस्सी में बांधने की कला उन्हें ज्ञात थी। शतपथ ब्राह्मण में घर के 2 अंग बताए गए हैं। प्रथम पुरुष आवास होते थे, जिसमें कई कमरे होते थे। द्वितीय स्त्रियों का निवास स्थान था, इसमें पीछे की ओर अनेक कमरे होते थे। पाली ग्रंथों का गृह सूत्रों के विवरण से पता चलता है कि बुद्ध काल तक वास्तुकला काफी विकसित हो गई थी। दीर्घ निकाय में इसे वुत्थुवज्जा अर्थात वास्तु विद्या कहा गया है तथा इसकी गणना विशिष्ट शिल्प के रूप में की गई है। जातक ग्रंथों में गंगा तट पर नगर एवं प्रसाद निर्मित किए जाने का विधान दिया गया है। महावर्धकी का उल्लेख है, जो वास्तु विद्या का ज्ञाता था। गुप्त काल तथा उसके बाद कला के विविध अंगों का सम्यक उत्कर्ष हुआ तथा तत्संबंधी ग्रंथ भी लिखे गए। इस समय के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य वाराहमिहिर वास्तु विद्या के भी महान आचार्य थे तथा उनकी रचना बेहद संहिता से वास्तुशास्त्र, प्रतिमाशास्त्र तथा चित्रशास्त्र की भी अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। इससे सूचित होता है कि वास्तुशास्त्र ब्रह्मा से उत्पन्न कलाकारों से विकसित किया गया। पुराण ग्रंथ भी वास्तुशास्त्र का विवरण प्रस्तुत करते हैं। इस दृष्टि से मत्स्य पुराण सर्वाधिक उल्लेखनीय है, जिसमें वास्तु तथा मूर्ति कला से संबंधित विवरण 8 अध्यायों में दिए गए हैं। साथ ही साथ वास्तुशास्त्र के कतिपय प्राचीन आचार्यों के नाम भी दिए गए हैं। ये इस प्रकार हैं: भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, नारद, नग्नजीत, शिराच, विशिलाच, पुरंदर, ब्रह्मकुमार, नंदीश, शौनक, गर्ग, वासुदेव, अनिरुद्ध, शुक्र, बृहस्पति आदि। कुछ अन्य पुराण जैसे वायु, भविष्य, अग्नि आदि भी स्थापत्य, मूर्ति, चित्र आदि का छिटपुट रूप से विवरण प्रस्तुत करते हैं। वास्तुशास्त्र के प्रवर्तकों में विश्वकर्मा तथा मय के नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। प्रथम को देवताओं तथा द्वितीय को असुरों का वास्तुकार माना गया है। इन दोनों के नाम पर अलग अलग संप्रदाय चल पड़े तथा शिल्प ग्रंथों की रचना की गई। विश्वकर्मा से संबद्ध संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय कहलाया। विष्णु धर्मोत्तर पुराण इसकी सबसे पहली रचना है। इसमें 43 अध्याय हैं, जिनमें वास्तु, मूर्तिकला तथा चित्रकला का वर्णन किया गया है। इसका 3रा अध्याय चित्रकला का ही वर्णन करता है, जिसे चित्र सूत्र कहा गया है। सम्रांगण सूत्राधार इस संप्रदाय की सर्वप्रमुख रचना है। इसके रचयिता भोज मालवा के परमारवंशी शासक, जिनका शासनकाल 1011 ईस्वी से 1046 ईस्वी माना जाता है थे। इसके अध्ययन से वास्तुकला के विभिन्न विधियों एवं विधानों का सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें कहा गया है कि जिस प्रकार विश्व रूप में विष्णु का आध्यात्म रूप होता है, जिसके ध्यान से आत्मशुद्धि होती है, उसी प्रकार कला के अंतर्भाव से उत्प्रेरित दर्शक का हृदय या मन पाप रहित हो जाता है। मय संप्रदाय के ग्रंथों में मयमत, मयमत शिल्पशास्त्र, मयमा वास्तुशास्त्र, मय शिल्पशतिका आदि उल्लेखनीय हैं। मयमत ने विभिन्न समणियों के राजाओं तथा सामंतों के उपयुक्त आवासों का वर्णन किया है। तदनुसार सम्राट का निवास स्थान 11 मंजिलों, सामान्य राजा का 7 मंजिलों, ब्राह्मण का 9 मंजिलों, वैश्य तथा सामान्य सेना नायक का 4 मंजिलों, शूद्र का 1 से 4 मंजिलों तथा सामंत प्रमुख का 5 मंजिलों का होना चाहिए। इन दोनों संप्रदायों से स्थापत्य संबंधी कुछ भिन्न धारणाएं भी स्थापित हो गईं। ये दोनों साथ साथ विकसित होती रहीं तथा क्रमशः दोनों के तत्व परस्पर घुल मिल गए। वास्तुकला के क्षेत्र में उपयुक्त ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया गया। इनमें से कुछ आज भी उपलब्ध हैं: स्वतंत्र ग्रंथ साम्रांगण सूत्रधार, शिल्प रत्नम, ईशान शिव गुरुदेव पद्धति मानसार सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। 12वीं शती में भुवन देव ने गुजरात के अपराजित पृच्छा की रचना जिसमें अन्य बातों के साथ साथ वास्तु की विविध विधाओं का भी उल्लेख मिलता है। पीके आचार्य ने मानसार को समस्त वास्तु ग्रंथों का आधार बताया है। वे इसे गुप्तकालीन रचना मानते हैं। उनके अनुसार इसकी रचना उस समय की गई जब ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन धर्म साथ साथ विकसित हो रहे थे। चूंकि यह स्थिति गुप्तकाल में रही, अतः मानसार गुप्त युगीन कृति होनी चाहिए, किंतु टीपी भट्टाचार्य इस मत से सहमत नहीं हैं तथा वे इसे पूर्व मध्यकाल का ग्रंथ बताते हैं। उल्लेखनीय है कि मानसार अधिकांशतः चोल, होयसल तथा यादव काल की वास्तुशैली का प्रतिनिधित्व करती है, अतः इसे 11वीं शती के बाद ही रखा जा सकता है। वास्तुशास्त्र के ग्रंथों से पता चलता है कि स्थपति अथवा भवन निर्माता का व्यवसाय समाज में सम्मानित माना जाता था। सम्रांगण सूत्रधार में स्थपति के विषय में बताया गया है कि उसे शास्त्राज्ञ, कर्म में कुशल, प्रज्ञावान, शीलवान तथा लक्षणों सहित वास्तु विद्या का ज्ञाता होना चाहिए। इसमें भवन निर्माण के क्रिया पक्ष पर बल देते हुए कहा गया है कि वह स्थपति जो शास्त्रों का जानकार है किंतु उसे क्रिया रूप में परिणत नहीं कर सकता, वह कार्य के समय उसी प्रकार असफल रहता है जिस प्रकार कायर व्यक्ति युद्ध उपस्थित होने पर बिल्कुल घबरा जाता है। इसी प्रकार केवल क्रिया पक्ष के ज्ञाता शिल्पी को भी अपूर्ण कहा गया है। युक्ति कल्पतरु में विविध प्रकार के जहाजों के निर्माण का विवरण प्राप्त होता है। 2 प्रकार के जहाजों, नदी मार्ग से होकर जाने वाले तथा समुद्री मार्ग से होकर जाने वाले जहाजों का उल्लेख मिलता है। जहाजों के निर्माण का विवरण देते हुए इसमें बताया गया है कि तख्तों को लोहे की कीलों के बजाय रस्सी से जोड़ना चाहिए, क्योंकि कील लगी होने से जहाज को चुंबकीय चट्टानें अपनी ओर खींच सकती हैं। मानसार तथा मयमत के अध्ययन से भी पता चलता है कि स्थपति विद्वान होता था और उसकी सामाजिक मान्यता उच्च कोटि की थी। मानसार में उसे विश्वकर्मा का पुत्र बताया गया है। मयमत में उसे निर्माण कार्य में प्रवीण तथा वास्तु विद्या का पंडित कहा गया है। अपराजित परीक्षा से ज्ञात होता है कि स्थपति वास्तु विद्या में मर्मज्ञ, नगर योजना तैयार करने में कुशल तथा बुद्धिमान होना चाहिए। रामायण, महाभारत, मानसार, मयमत, सम्रांगण, सूत्रधार आदि ग्रंथों के अध्ययन से नगर या पूर्व निर्माण के संबंध में समुचित जानकारी मिल जाती है। इन ग्रंथों में नगर सन्निवेश के निम्नलिखित अंग बताए गए हैं: भूमि परीक्षण, भूमि संग्रह या चयन, दिशा निर्धारण या दिक् परिच्छेद, भूमिका खंडों में वर्गीकरण या पद विन्यास, बलिकर्म या पूजन अर्चन, ग्राम या नगर विन्यास, भूमि विधान या विभिन्न मंजिलों वाले भवन, द्वार निर्माण या गोपुरम, मंडप निर्माण, राजप्रसाद निर्माण या राजवेश्म विधान। युक्ति, कल्पतरु, मानसार आदि ग्रंथों में दुर्ग निर्माण संबंधी जानकारी दी गई है। निर्माण स्थान के देवता को वास्तुस्पति कहा गया है। मंदिर निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री तथा निर्माता कारीगरों का वर्णन भी शिल्प रत्न, मानसार, कश्यप शिल्प आदि ग्रंथों में प्राप्त होता है। वेद संहिता से ज्ञात होता है कि मंदिर के प्रवेश द्वार के बाजुओं को द्वारपाल उड़ते हुए हंसों के जोड़े, श्रीवृक्ष, स्वस्तिक, घट, मिथुन, पत्रवल्ली आदि से सुसज्जित किया जाता था। कालिदास कृत मेघदूत के उत्तर भाग से पता चलता है कि चौखट पर शंख तथा पद्म की आकृतियां उत्कीर्ण की जाती थी। इस प्रकार वास्तुशास्त्र पर लिखा गया प्राचीन साहित्य बहुसंख्यक है। इसे देखने से पता चलता है कि प्राचीन भारत में स्थापत्य तकनीक अत्यंत विकसित थी। चित्रकला के संबंध में भी विविध ग्रंथों से सूचना प्राप्त होती है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है कि सभी कलाओं में चित्रकला श्रेष्ठ है तथा यह धर्म, काम, अर्थ एवं मोक्ष को देने वाली है। इसमें चित्रकला के तकनीकी पक्ष का भी विवरण मिलता है। सम्रांगण सूत्रधार में भी इसी बात की पुष्टि करते हुए बताया गया है कि चित्र सभी शिल्पों का मुख्य एवं संसार का प्रिय है। वात्स्यायन के कामसूत्र में चित्रकला की गणना 64 कलाओं में की गई है, जिसका ज्ञान सुसंस्कृत व्यक्ति के लिए आवश्यक था। इसके भाष्यकार यशोधर पंडित ने चित्र के छह अंगों का उल्लेख किया है: रूप भेद, प्रमाण या उचित अनुपात, भाव, लावण्य योजना या सौंदर्य विरूपण, सादृश, जैसा हो वैसा ही चित्रांकन एवं वर्णिका भंग या उचित रंगों का भरना। कालिदास के ग्रंथों रघुवंश, मेघदूत, मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि से भी चित्रकला के विषय में कुछ जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त चित्रकला के स्रोत हर्षचरित, कादंबरी, उत्तर रामचरित आदि ग्रंथ भी हैं। बौद्ध साहित्य के अध्ययन से भी चित्रकला विषय कुछ बातें ज्ञात होती हैं। विनय पुटक, थेरगाथा एवं थेरी गाथा में चित्रों का उल्लेख मिलता है। महाउमंग जातक में चित्रशाला तथा चित्रों की रचना के विषय में विवरण मिलता है। हमारे प्राचीन साहित्य में कला के विविध रूपों के संबंध में जो सामग्री दी गई है, उसके आधार पर पी के आचार्य, आनंद कुमार स्वामी, वासुदेव शरण अग्रवाल, निहार रंजन राय, कृष्णदेव, के आर श्रीनिवासन, के वी सौंदर्य राजन आदि विद्वानों ने जो ग्रंथ प्रस्तुत किए हैं, उनके अध्ययन से कला का सांगोपांग ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। इन विद्वानों की रचनाएं भी कला की महत्वपूर्ण स्रोत हैं। विदेशी विवरण, साहित्य के साथ साथ कुछ विदेशी यात्रियों के विवरण भी वास्तुकला के साधन है। मेघस्थनीज के विवरण से पाटलिपुत्र के नगर विन्यास के विषय में कुछ जानकारी होती है। तदनुसार यह 80 स्टेडिया या 16 किलोमीटर लंबा तथा 15 स्टेडिया या 3 किलोमीटर चौड़ा था। इसके चारों 185 मीटर चौड़ी तथा 30 हाथ गहरी खाई थी। नगर चारों ओर से ऊंची दीवार से घिरा था, जिसमें 64 तोरण द्वार तथा 570 बुर्ज थे। भव्यता और शान शौकत में सूसा एवं एक बतना के राजमहल भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। इस प्रकार चीनी यात्री फाहियान के विवरण से भी मौर्य राजप्रसाद की भव्यता की सूचना मिलती है। फाहियान लिखता है कि राजमहल तथा नगर के बीच बने सभा भवन आज भी यथावत हैं। इन सभी को देवदूतों ने बनाया था, जिन्होंने पत्थर के ढेर एकत्र किए, दीवारें एवं द्वार बनाए, पत्थरों पर इतनी आश्चर्यजनक खुदाई और पच्चीकारी किया कि ऐसी रचना कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता था। इसके अतिरिक्त उसने अशोक द्वारा बनवाए गए 6 स्तंभों का भी उल्लेख किया है। वेनसांग तथा इत्सिंग जैसे यात्रियों के विवरण से मौर्यकालीन स्तंभ एवं स्तूपों की जानकारी मिलती है। फेनसांग अशोक द्वारा स्थापित 15 स्तंभों का उल्लेख करता है जो संकाश्य, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगृह में विद्यमान थे। वह यह भी सूचित करता है कि तक्षशिला, श्रीनगर, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, कौशाम्बी, श्रावस्ती, वाराणसी, सारनाथ, वैशाली, गया, कपिलवस्तु आदि में अशोक द्वारा स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। वेनसांग के कुछ समय बाद आने वाले चीनी यात्री इत्सिंग ने भी स्तूप निर्माण की परंपरा का उल्लेख किया है। उसके अनुसार पूजार्थक स्तूपों का निर्माण भिक्षु तथा उपासक दोनों ही करते थे, क्योंकि लोगों में ऐसा विश्वास था कि यह कार्य अत्यंत पुण्यदायक है। पूर्व मध्यकाल के मुस्लिम लेखकों के विवरण से भी कुछ प्राचीन नगरों के विन्यास के विषय में जानकारी मिलती है। अलबरूनी तथा उत्बी के विवरण से पता चलता है कि कन्नौज नगर अत्यंत व्यवस्थित एवं भव्य था। महमूद गजनवी जैसे मूर्तिभंजक के अनुसार कन्नौज तथा मथुरा के मंदिरों जैसा कोई अन्य वास्तु यदि कोई निर्मित करना चाहता था तो उसे काम पर सर्वाधिक अनुभवी कारीगरों को लगाने पर भी 1,00,000 सोने की दिनारें खर्च करनी पड़ती तथा 200 वर्ष का समय लगाना होता। इस प्रकार पूर्व मध्यकालीन वास्तु अथवा स्थापत्य के ज्ञान में मुस्लिम विवरण भी न्यूनाधिक रूप में सहायक हैं। पुरातत्व भी कला का महत्वपूर्ण स्रोत माना जा सकता है। विभिन्न स्थलों से जो खुदाइयाँ हुई हैं उनसे भवनों, मंदिरों, मूर्तियों आदि के अवशेष प्राप्त होते हैं जिनसे कला के विविध पक्षों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। सैंधव सभ्यता की वास्तु एवं मूर्तिकला का ज्ञान हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन में प्राप्त सामग्रियों से होता है। ये दोनों ही नगर वास्तु विन्यास का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। भवन तथा मंदिर निर्माण संबंधी जो विविध उल्लेख प्राचीन साहित्य में मिलता है पुरातात्विक अवशेषों में उनके मूर्त रूप प्राप्त होते हैं। आहत सिक्कों तथा औदुम्बरों, पांचालों आदि की मुद्राओं में अंकित मंदिरों की आकृतियों से पता चलता है कि प्रारंभिक मंदिर अथवा देवस्थान सीधे साधे रूप में बनाए जाते थे। भूमि के कुछ ऊंचे स्थान पर प्रतिमाएं स्थापित की जाती थी तथा उसके चतुर्दिक वेदिका बनाई जाती थी। इसी प्रकार गुप्त काल के जो बहुसंख्यक मंदिर, मूर्तियां एवं चित्रकारियां मिलती हैं उनसे उस काल के कलात्मक उत्कर्ष का ज्ञान प्राप्त होता है। V.S. अग्रवाल के शब्दों में गुप्त काल का गौरव इसके दृश्य कलात्मक रचनाओं द्वारा स्थायी बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले तथा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका के शिलाश्रयों एवं गुफाओं से जो चित्रकारियां मिली हैं उनसे प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला का ज्ञान होता है। इतिहास के प्रत्येक युग से संबंधित पुरातात्विक अवशेष मिले हैं जिनके आधार पर वास्तु तत्क्षण एवं चित्रकला के स्वरूप एवं उद्देश्य को समझने में मदद मिलती है। इस प्रकार साहित्य तथा पुरातत्व प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य के ज्ञान का प्रमुख स्रोत हैं। जहाँ साहित्य कला के सैद्धांतिक स्वरूप को उद्योतित करता है वहीं पुरातत्व उसके यथार्थिक रूप को उद्घाटित करता है। कला के अंग। यद्यपि कला शब्द से सभी प्रकार की कलाओं का बोध हो जाता है फिर भी सुविधा के दृष्टि से इसका विभाजन वास्तु अथवा स्थापत्य, तत्क्षण या मूर्ति, चित्रकला, रिलीफ स्थापत, मृदभांड कला आदि प्रकारों में किया गया है। इनका विवरण इस प्रकार है। वास्तु या स्थापत्य। वास्तु शब्द वस् धातु से बना है जिसका अर्थ है किसी एक स्थान पर निवास करना। तुमन प्रत्यय लगाकर वास्तु शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है वह भवन जिसमें मनुष्य या देवता का वास हो। भारतीय साहित्य में वास्तु के अंतर्गत नगर विन्यास, भवन, स्तूप, गुहा, मंदिर आदि का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में भवन निर्माण के समय वास्तुस्पति देवता के आह्वान करने का विधान मिलता है। सायण के अनुसार वास्तु का अर्थ गृह है तथा उसका रक्षक देवता वास्तुस्पति है। अर्थात अर्थशास्त्र में गृह, सेतु, क्षेत्र आदि रचनाओं के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग मिलता है। इसी प्रकार स्थापत्य शब्द स्थपति से बना है जिसका अर्थ है कारीगर या बढ़ई। अतः वास्तु और स्थापत्य दोनों ही शब्द भवन निर्माण को सूचित करते हैं। कला में दोनों का प्रयोग प्रायः समान अर्थ में ही किया गया है किंतु तकनीकी दृष्टि से दोनों में कुछ अंतर भी है। सभी वास्तु रचनाओं को स्थापत्य नहीं कहा सकता। केवल वही वास्तु स्थापत्य कहे जाने योग्य हैं जिसमें कारीगरी अथवा नक्काशी हो। इस दृष्टि से विचार करने पर सैंधव वास्तु को हम स्थापत्य नहीं कह सकते हैं। मूर्तिकला, इसे तत्क्षण भी कहते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पाषाण अथवा धातु निर्मित मूर्तियां आती हैं। चित्रकला, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की चित्रकारियों का उल्लेख किया गया है जो भवनों की दीवारों, छतों, स्तंभों, पर्वत, गुफाओं आदि पर अंकित मिलती हैं। रिलीफ स्थापत्य, पत्थर, चट्टान, धातु आदि के फलक पर जो चित्र या मूर्ति उकेर कर बनाई जाती है उन्हें रिलीफ स्थापत्य चित्र कहा जाता है। इसे उत्कीर्ण अथवा भास्कर कला भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को मृदभांड कला, सिक्के या मुहरों की कला को मुद्रा कला, हाथी दांत के से बने वस्तुओं की कला को दंत कला एवं जिन कलाओं से आनंद की प्राप्ति एवं सौंदर्य का भाव जागृत होता है उन्हें ललित कला कहा जाता है। इसमें काव्य, संगीत, चित्र, वास्तु, मूर्ति आदि की गणना की गई है। वात्स्यायन ने 64 कलाओं का उल्लेख किया है। भारतीय परंपरा में ललित कलाओं को परमानंद की प्राप्ति का साधन स्वीकार किया गया है, इंद्रिय सुख का साधन नहीं। वस्तुतः रूप या सौंदर्य का ध्येय चित्त वृत्तियों को उन्नत करना था, न कि प्राप्त वृत्तियों को जागृत करना। भारतीय कला की आधारभूत विशेषताएं। भारतीय कला की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे अन्य देशों की कलाओं से पृथक करती हैं। इसकी सर्वप्रथम विशेषता के रूप में निरंतरता एवं अविच्छिन्नता को रखा जा सकता है। लगभग 5,000 वर्ष पुरानी सिंधु सभ्यता की कलाकृतियों से लेकर 12वीं सदी तक की कलाकृतियों में एक अविच्छिन्न कलात्मक प्रवाहित होती है। भारतीय कला के विभिन्न तत्वों जैसे नगर विन्यास, स्तंभयुक्त भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण आदि का जो रूप हमें भारत की इस प्राचीनतम सभ्यता में दिखाई देता है, उसी के आधार पर कालांतर में वास्तु तथा तत्क्षण का सम्यक विकास हुआ। भारतीय संस्कृति का प्रधान तत्व धार्मिकता अथवा आध्यात्मिकता की प्रबल भावना है, जिसने उसके सभी पक्षों को प्रभावित किया है। कला भी इसका अपवाद नहीं है। इसके सभी पक्षों, वास्तु या स्थापत्य, तत्क्षण चित्रकला आदि के ऊपर धर्म का व्यापक प्रभाव देखा जा सकता है। हिंदू, जैन, बौद्ध आदि धर्मों से संबंधित मंदिरों, मूर्तियों तथा चित्रों का निर्माण कलाकारों द्वारा किया गया, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि इसमें लौकिक विषयों की उपेक्षा की गई। धार्मिक रचनाओं के साथ ही साथ भारतीय कलाकारों ने लौकिक जीवन से संबंधित मूर्तियों अथवा चित्रों का निर्माण भी बहुतायत से किया है। इस प्रकार धार्मिकता तथा लौकिकता का सुंदर समन्वय हमें भारतीय कला में देखने को मिलता है। भारतीय कला में अभिव्यक्ति की प्रधानता दिखाई देती है। कलाकारों ने अपनी कुशलता का प्रदर्शन शरीर का यथार्थ चित्रण करने अथवा सौंदर्य को उभारने में नहीं किया है, इसके स्थान पर आंतरिक भावों को उभारने का प्रयास ही अधिक हुआ है। इसका सबसे सुंदर उदाहरण हमें विशुद्ध भारतीय शैली में बनी हुई बुद्ध मूर्तियों में देखने को मिलता है। जहाँ गांधार शैली की मूर्तियों में बौद्धिकता एवं शारीरिक सौंदर्य की प्रधानता है, वहाँ गुप्तकालीन मूर्तियों में आध्यात्मिकता एवं भावुकता है। भारतीय कलाकार ने बुद्ध मूर्तियाँ बनाते समय उनके मुखमंडल पर शांति, गंभीरता एवं अलौकिक आनंद को उभारने की ओर ही विशेष ध्यान दिया है तथा इसमें उसे अद्भुत सफलता प्राप्त हुई है। भारतीय कलाकार का आदर्श अत्यंत ऊंचा था। उसने कला को इंद्रिय सुख के साथ ही इंद्रिय सुख की प्राप्ति का साधन न मानकर परमानंद की प्राप्ति का साधन स्वीकार किया था। उसकी दृष्टि में रूप या सौंदर्य पाप वृत्तियों को उकसाने का साधन नहीं था, अपितु इसका उद्देश्य चित्त वृत्तियों को ऊंचा उठाना था। भारतीय कला का एक विशिष्ट एवं प्रतीकात्मकता है। इसमें कुछ प्रतीकों के माध्यम से अत्यंत गूढ़ दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त कर दिया गया है। कुषाण युग के पूर्व महात्मा बुद्ध का अंकन प्रतीकों के माध्यम से ही किया गया है। पद्म, चक्र, हंस, मिथुन, स्वास्तिक आदि प्रतीकों के माध्यम से विभिन्न भावनाओं को व्यक्त किया गया है। पद्म प्राण या जीवन का, चक्र काल या गति का, स्वास्तिक सूर्य सहित चारों दिशाओं का प्रतीक माना गया है। अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ की फलक पर उत्कीर्ण चार पशुओं गज, अश्व, बैल तथा सिंह के माध्यम से क्रमशः महात्मा बुद्ध के विचार, जन्म, गृह त्याग तथा सार्वभौम सत्ता के भावों को व्यक्त किया गया है। भारतीय कला में कई अनेक शुभ अथवा मंगल सूचक प्रतीक भी हैं। भारतीय कलाकार भौतिक यथा वैभव के प्रति उदासीन थे। लगता है इसी कारण उन्होंने अपनी कृतियों में कहीं भी अपने नाम का उल्लेख नहीं किया है। भारतीय संस्कृति में अभिव्यक्ति समन्वय की प्रवृत्ति भी कलात्मक कृतियों के माध्यम से मूर्तवान हो उठी है। सुकुमारता का गंभीरता के साथ, रमणीयता का संयम के साथ, अध्यात्म का सौंदर्य के साथ तथा यथार्थ का आदर्श के साथ अत्यंत सुंदर समन्वय हमें इस कला में दिखाई देता है। सुप्रसिद्ध कलाविद हेवेल ने आदर्शवादिता, रहस्यवादिता, प्रतीकात्मकता तथा पारलौकिकता को भारतीय कला का सार तत्व निरूपित किया है। भारत की कला राष्ट्रीय एकता को स्थूल रूप प्रकट करने का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। समूचे देश की कलात्मक विशेषताएं प्रायः एक जैसी हैं। मूर्तियों में समान लक्षण तथा मुद्राएं देखने को मिलती हैं।
विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों को देखने के बाद ऐसा जान पड़ता है कि वे किसी देशव्यापी संस्था द्वारा तैयार करवाई गई हैं। पर्वतों को काटकर बनाए गए मंदिरों अथवा पाषाण निर्मित मंदिरों में यद्यपि कुछ स्थानीय विभिन्नताएं हैं, तथापि उनकी सामान्य शैली एक ही प्रकार की है। इनके माध्यम से भारतीय एकता की भावना साकार ही होती है। इस प्रकार भारतीय कला राष्ट्रीय एकता की संदेश वाहिका है। भारतीय कला की एक अन्य विशेषता यह है कि इसमें अलंकरण की प्रधानता दिखाई देती है। अति प्राचीन काल से ही कलाकारों ने अपनी कृतियों को विविध प्रकार से अलंकृत करने का प्रयास किया है। अलंकरणों का उद्देश्य सौंदर्य को बढ़ाना है। भारतीय कला में सर्वांगीणता दिखाई देती है। दूसरे शब्दों में इसमें राजा तथा सामान्य जन दोनों का चित्रण मुक्त रूप से किया गया है। यदि मौर्य काल की कला दरबारी है तो शुंग काल की कला लोक जीवन से संबंधित है। विभिन्न कालों की कला कृतियों में सामान्य जनजीवन की मनोरम झांकी सुरक्षित है। यदि भारतीय कलाकार ने कुलीन वर्ग की रुचि के लिए विशाल एवं सुंदर कृतियों का निर्माण किया है तो सामान्य जनता के लिए रुचिकर रचनाएँ भी गढ़ी हैं। इस प्रकार V.S. अग्रवाल के शब्दों में भारतीय कला देश के विचार धर्म तत्व ज्ञान तथा संस्कृति का दर्पण है। भारतीय जनजीवन की पुष्कल व्याख्या कला के माध्यम से हुई है। भारतीय कला की एक विशेषता के रूप में सार्वभौमिकता अथवा अंतर्राष्ट्रीयता का उल्लेख किया जा सकता है। इसके तत्व देश की सीमाओं का अतिक्रमण कर दक्षिण पूर्वी एशिया से लेकर मध्य एशिया तक के विभिन्न स्थानों में अत्यंत प्राचीन काल में ही फैल गए। प्रसिद्ध कलाविद आनंद कुमार स्वामी ने तो दक्षिण पूर्वी एशिया की कला को भारतीय कला का ही एक अंग स्वीकार किया है। इसी प्रकार मध्य एशिया के मूर्तियों तथा स्तूपों पर भी गांधार प्रभाव देखा जा सकता है। अब जो अगला है इसी पाठ में पुरातत्व है। पुरातत्व की हम पहले परिभाषा तथा अध्ययन क्षेत्र बताना चाहेंगे। पुरातत्व को अंग्रेजी भाषा में आर्कियोलॉजी कहा जाता है। यह यूनानी भाषा के दो शब्दों आर्कियोस तथा लोगोस से मिलकर बना है। प्रथम का अर्थ है पुरातन तथा दूसरे का ज्ञान। इसी प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ पुरातन ज्ञान है, किंतु पुरातत्व शब्द का प्रयोग मात्र इसी संकुचित अर्थ में नहीं किया जाता, अपितु आज इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो गया है। यह वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इस संबंध में विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई पुरातत्व की परिभाषाओं पर दृष्टिपात करना भी आवश्यक प्रसिद्ध होता है। प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री गार्डन चाइल्ड के शब्दों में भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों का ज्ञान ही पुरातत्व है। लियोनार्ड कैटोरेल के मतानुसार मानव द्वारा छोड़े गए अवशेषों के माध्यम से ज्ञात उसकी कहानी पुरातत्व है। ये अवशेष उपकरण अस्त्र शस्त्र दैनिक घरेलू उपयोग की वस्तुएं कब्र मानव या पशु अवशेष भी सभी हो सकते हैं। ग्राहम क्लार्क कहते हैं मानव अतीत के पुनर्निर्माण के साधन के रूप में पुरावशेषों के क्रमबद्ध अध्ययन को पुरातत्व कहते हैं। बी बी लाल का विचार है कि पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा है जो अतीत की मानव संस्कृतियों को व्याख्यायित करती है। HD सांकलिया पुरावशेषों के अध्ययन को पुरातत्व मानते हैं। क्रोफोर्स का विचार है कि पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा है जो अतीत के गर्भ में छिपी हुई मानव संस्कृतियों का अध्ययन करती है तथा व्यवहार में उसका प्रभाव एवं उद्देश्य आदिकालीन तथा प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का विवरण प्रस्तुत करना है। इस प्रकार लियोनार्ड बुली पुरातत्व का लक्ष्य मानव सभ्यता के विकास को खोजना तथा उन्हें प्रदर्शित करना बताते हैं। डेनियल की धारणा है कि पुरातत्व का प्रयोग दो मुख्यतः अर्थों में किया जा सकता है। पहला प्राचीन काल के भौतिक अवशेषों का अध्ययन के रूप में तथा दूसरा प्रागैतिहासिक पुरावशेषों के अध्ययन के रूप में। प्रारंभिक विद्वानों की दृष्टि में पुरातत्व एक सहायक विषय था। वाल्टर टेलर नामक अमेरिकी विद्वान ने पुरातत्व को मात्र साक्ष्य एकत्र करने की प्रणाली तथा तकनीकों का संग्रह बताया। उनके अनुसार पुरातत्ववेत्ता वस्तुतः एक तकनीशियन के अलावे कुछ भी नहीं होता। पीगट ने पुरातत्व को इतिहास की एक शाखा के रूप में निरूपित किया, किंतु हाल के दशक में पुरातत्व संबंधी विचारधारा में परिवर्तन आया है तथा इसकी प्रतिष्ठा एक स्वतंत्र विषय के रूप में होने लगी है। पुरातत्व को एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले विद्वानों में सर मार्टिमर व्हीलर का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है। पुरातत्व को मात्र तकनीकों का समूह मानने वालों को सटीक उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि पुरातत्ववेत्ता केवल वस्तुओं को ही नहीं देखता अपितु वह मनुष्यों को भी खोदता है। वह तथ्यों का अन्वेषक होता है। उसके तथ्य मनुष्य की उपलब्धियों के भौतिक वित्त मटेरियल रिकॉर्ड्स होते हैं। ये यद्यपि निर्जीव होते हैं तथापि पुरातत्ववेत्ता उन्हें अपनी विश्लेषणात्मक शक्ति से सजीव बना देता है। उसके पास एक कलाविद तथा दार्शनिक जैसी कल्पना शक्ति भी होती है जिसका उपयोग करते हुए वह निर्जन स्थलों एवं वस्तुओं में जीवन का संचार कर देता है। इस दृष्टि से वह मानववादी है। इस प्रकार पुरातत्व का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। लिखित साक्ष्य अधिक से अधिक 5000 वर्ष प्राचीन हो सकते हैं जबकि मनुष्य का आविर्भाव 30 लाख वर्ष पहले हुआ। कालक्रम की दृष्टि से मानव सभ्यता का 0.001% भाग ही इतिहास की परिधि में आता है। इसके पूर्ववर्ती प्रागैतिहासिक एवं आद्य ऐतिहासिक काल हैं। इनके सुदीर्घ काल में मनुष्य की गतिविधियों का अध्ययन पुरातत्व के माध्यम से ही संभव है। भौतिक अवशेषों के द्वारा पुराविद मानव के संपूर्ण परिवेश को निर्मित कर देता है। प्रागैतिहासिक एवं आद्य ऐतिहासिक काल की इतिहास तो पूर्णतया पुरातात्विक अन्वेषणों पर ही आधारित है जबकि ऐतिहासिक काल के इतिहास को पुरातत्व वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। पुरातत्व के अध्ययन क्षेत्र में ही हम संस्कृति की व्याख्या का प्रामाणिक आधार प्राप्त कर लेते हैं जिससे सांस्कृतिक परिवर्तन की भी व्याख्या की जा सकती है। मानव अतीत के सूक्ष्म विषयों का ज्ञान हमें पुरातत्व के माध्यम से ही होता है क्योंकि लिखित साक्ष्यों में प्रायः जन सामान्य की गतिविधियाँ गौण होती हैं। पुरातत्ववेत्ता उत्खनन के दौरान प्राप्त की गई सामग्रियों का सुनियोजित ढंग से कालक्रम को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करता है तथा यहाँ उसका कार्य क्षेत्र व्यापक हो जाता है। वह किसी संस्कृति विशेष के स्वरूप उसमें निर्मित उपकरणों के प्रकार उसका विस्तार क्षेत्र के साथ ही साथ उसके विकसित एवं विलुप्त होने की प्रक्रिया को जानने का प्रयास करता है। वह प्राचीन मानव समुदाय की सामाजिक धार्मिक आर्थिक एवं राजनीतिक दशा पर प्रकाश डालता है एवं भौतिक जगत में मानव द्वारा किए गए परिवर्तन का भी ज्ञान कराता है। वह भौतिक उपकरणों तथा अवशेषों का मानवतावादी दृष्टि रखते हुए नियंत्रित कल्पना शक्ति द्वारा प्राचीन संस्कृति का यथासंभव जीवन इतिहास निर्मित कर देता है। इस दृष्टि से उसकी कार्य पद्धति एक कलाकार और वैज्ञानिक जैसी होती है। वह मानव ज्ञान को विस्तृत कर देता है तथा मनुष्यों में संकीर्ण राष्ट्रीय भावना से ऊपर उठकर विश्व के सभी प्राचीन मानव समुदायों की रीति रिवाजों के प्रति सहानुभूत एवं करुणा उत्पन्न कर देता है। प्राचीन मनुष्यों के रहन सहन खान पान आवास उपकरण आदि का अध्ययन पुरातत्ववेत्ता को करना पड़ता है। वह यह भी जानने का प्रयास करता है कि प्राचीन लोगों के धार्मिक अनुष्ठान क्या थे, उनमें मूर्ति पूजा का प्रचलन था या नहीं, जादू टोने में किस सीमा तक उनका विश्वास था, मृतक संस्कार का स्वरूप कैसा था। आज वह यह भी जानने का प्रयास करता है कि किसी क्षेत्र विशेष में एक ही तरह की संस्कृति उत्पत्ति कैसे हुई, उसके निवासी स्वदेशी थे अथवा आवर्जक। उन्नत संस्कृति एक क्षेत्र में विकसित होकर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रसारित हुई अथवा अलग अलग क्षेत्र के निवासियों ने स्वतंत्र रूप से उसका आविष्कार किया। इस संबंध में व्हीलर का कथन वस्तुतः महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार एक सैनिक मानचित्र को सामने रखकर उसमें दिखाए गए ठिकानों से नहीं बल्कि उसके सैनिकों से युद्ध करता है, उसी प्रकार पुराविद के लिए भी एक प्रकार से कहा जा सकता है कि वह उत्खनन में वस्तुओं को नहीं अपितु उनका निर्माण और प्रयोग करने वाले मनुष्यों को खोजता है। वह कल्पनाशील तो होता है परंतु उसकी कल्पना शक्ति नियंत्रित होती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है जिसके अंतर्गत मानव से संबंधित समस्त क्रियाकलापों सामाजिक आर्थिक राजनैतिक धार्मिक का अध्ययन सम्मिलित है। साथ ही यह मानव के क्रमबद्ध सांस्कृतिक विकास को भी व्याख्यायित करने का प्रमुख साधन है। उत्खनन की विधियाँ। पुरातत्व में उत्खनन का विशेष महत्व है क्योंकि इसी के माध्यम से भूगर्भ में छिपी हुई पुरावस्तुओं को प्रकाश में लाया जाता है। 20वीं सदी के पूर्व तक उत्खनन का कार्य अव्यवस्थित ढंग से किया जाता था। इसके प्रारंभिक स्तर पर निर्धारित क्षेत्र में दूर दूर तक गड्ढे खोदे जाते थे और यदि किसी भवन अथवा दीवार का कोई अंश मिल जाता था तो उसके ज्ञान के लिए उन्हें मिला दिया जाता था। किंतु कालांतर में वैज्ञानिक तकनीक विकसित होने के फलस्वरूप व्यवस्थित ढंग से उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। संप्रति उत्खनन की दो प्रमुख विधियां व्यवहार में लाई जाती हैं। पहला लंबवत उत्खनन वर्टिकल एक्सकेवेशन या दूसरा क्षैतिज उत्खनन या हॉरिजेंटल एक्सकेवेशन। इनका विवरण इस प्रकार है। जो लंबवत उत्खनन है जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है इसमें किसी स्थान की लंबा लंबी खुदाई की जाती है। यह खुदाई तब तक चलती है जब तक कि प्राकृतिक मिट्टी न मिल जाए। इसमें ऊपर से नीचे खोदा जाता है। यह सामान्यतः स्थल के कुछ भाग तक ही सीमित होती है। इसके द्वारा सभ्यता का प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता, अपितु हम विभिन्न संस्कृतियों के कालक्रम का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में इससे यह जानकारी मिलती है कि संबंधित स्थल कितने समय तक तथा किन किन व्यक्तियों द्वारा विकसित किया गया। इसी कारण विलर ने इस विधि को काल मापन अथवा संस्कृति मापन, टाइम स्केल और कल्चर स्केल की संज्ञा प्रदान की है। इस उत्खनन के द्वारा यह जाना जा सकता है कि उस क्षेत्र में किस संस्कृति के लोग कब आए तथा उनका विनाश कब हुआ। यह विधि विभिन्न संस्कृतियों के पूर्वापर क्रम तथा पारस्परिक संबंध ज्ञात करने में भी सहायता करती है। चूँकि यह उत्खनन एक सीमित क्षेत्र में ही किया जाता है, अतः इसके माध्यम से किसी संस्कृति अथवा सभ्यता का संपूर्ण चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित नहीं हो पाता है। इससे किसी संस्कृति के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक आदि पक्षों के विषय में जानकारी नहीं मिलती, जो मानव के विस्तृत इतिहास लेखन के लिए आवश्यक है। अतः लंबवत उत्खनन किसी संस्कृति के कालक्रम एवं स्तरीकरण के ही ज्ञान में सहायक हो सकता है। विलर के शब्दों में बायोवर्टिकल एक्सकेवेशन इज मेंट द एक्सकेवेशन ऑफ ए रिस्ट्रिक्टेड एरिया इन डेप्थ विथ अ व्यू एंड अक्रेटेनिंग द सक्सेशन ऑफ कल्चर्स ऑफ अ फेसेस एंड ऑफ प्रोड्यूसिंग अ टाइम स्केल और कल्चर स्केल फॉर द साइट। क्षैतिज उत्खनन, इससे तात्पर्य है समस्त टीले अथवा उसके बृहत भाग की खुदाई करना। इसमें खुदाई लंबवत न होकर विस्तार में की जाती है। इस तरह की खुदाई से हम संबंधित स्थल की काल विशेष की संस्कृति का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के साथ ही संबंधित सभ्यता के अप्रत्यक्ष अवशेष भी प्राप्त कर सकते हैं। इससे यह उद्घाटित होता है कि सभ्यता को विकसित करने में किसी स्थान विशेष का क्या योगदान रहा। किसी सभ्यता के सम्यक स्वरूप का निरूपण क्षैतिज उत्खनन के माध्यम से ही होता है। व्हीलर के अनुसार क्षैतिज उत्खनन से तात्पर्य किसी संस्कृति का सर्वांगीण परिचय प्राप्त करने के लिए किसी पुरास्थल के काल विशेष से संबंधित संपूर्ण अथवा उसके विस्तृत भाग की खुदाई करना है। इस प्रकार क्षैतिज उत्खनन किसी स्थान विशेष के संपूर्ण संस्कृति के ज्ञान के लिए आवश्यक है। इस विधि का प्रयोग सर जॉन मार्शल ने 1944 से 1945 ईस्वी में तक्षशिला के सिरकप टीले पर करके पार्थियन युग की संस्कृति का चित्रण प्रस्तुत किया था। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो के क्षैतिज उत्खनन से वहां के भवनों, सड़कों, गलियों, नालियों, दुर्ग नगर विन्यास आदि का विस्तृत ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन लंबवत उत्खनन के अभाव में उनके विकास क्रम की कोई जानकारी नहीं हो पाई। क्षैतिज उत्खनन व्यय साध्य होने के कारण बहुत कम किया गया है। फलस्वरूप उत्खननों से भारतीय प्राचीन भारतीय इतिहास की अनेक अवस्थाओं के भौतिक जीवन का पूर्ण और समग्र चित्र हमारे सामने प्रस्तुत नहीं हो पाता। पुराविद उत्खनन की उपर्युक्त तो दोनों विधियों को एक दूसरे की पूरक मानते हैं। किसी भी स्थान पर दोनों का प्रयोग अलग अलग नहीं किया जा सकता, अतः उत्खनित क्षेत्र की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए लंबवत तथा क्षैतिज दोनों का प्रयोग आवश्यक है। लंबवत उत्खनन द्वारा किसी क्षेत्र की प्राचीनता, उसके निवासियों के स्वरूप तथा उनके उत्थान पतन की जानकारी मिल जाती है। तत्पश्चात क्षैतिज विधि से उत्खनन करके उस स्थल की सभ्यता या संस्कृति का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार किसी स्थल का क्षैतिज उत्खनन करने से पहले लंबवत उत्खनन द्वारा उसके स्तर विन्यास का विधिवत अध्ययन कर लेना अभीष्ट है, अन्यथा सभ्यता का निर्धारण ठीक ढंग से नहीं किया जा सकता। वस्तुतः इन दोनों विधियों से प्राप्त जानकारी से ही हम किसी काल के इतिहास एवं उसकी संस्कृति का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। व्हीलर ने लंबवत उत्खनन को क्षैतिज उत्खनन का पूर्वागामी माना है। दोनों के पारस्परिक संबंध के विषय में उनका कहना है कि लंबवत उत्खनन गाड़ी के बिना ही रेल समय सारणी है, जबकि क्षैतिज उत्खनन समय सारणी के बिना ही रेलगाड़ी है। वर्टिकल डेगिंग इज रेलवे टाइम टेबल विदाउट ट्रेन एंड द हॉरिजेंटल डेगिंग इज रेलवे ट्रेन विदाउट टाइम टेबल। जिस प्रकार समय सारणी से क्रमशः एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की जानकारी तो हो जाती है, लेकिन संस्कृति रूपी गाड़ी के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता, उसी प्रकार क्षैतिज उत्खनन बिना समय सारणी के रेलगाड़ी की भांति है, जिसके विषय में यह ज्ञात नहीं हो पाता कि कब छूटी, किन किन स्टेशनों पर रुकी तथा कहाँ पहुँची। इस प्रकार क्षैतिज उत्खनन से किसी सभ्यता के विस्तार का क्रम का ज्ञान नहीं हो सकता। अस्तु उत्खनन की दोनों विधियों का प्रयोग करके ही हम सभ्यता के संपूर्ण स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह आवश्यक है कि पहले किसी पुरास्थल का लंबवत उत्खनन कर उसकी संस्कृतियों का क्रम निर्धारित किया जाए तथा फिर विभिन्न संस्कृतियों अथवा किसी संस्कृति विशेष के पुरास्थल का क्षैतिज उत्खनन करवाया जाए। तभी संस्कृति अथवा सभ्यता के कालानुक्रमिक विकास एवं संपूर्ण स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। किसी भी पद्धति के अभाव में संबंधित संस्कृति विषय का संपूर्ण पक्ष उजागर नहीं हो सकता। पुरातत्व तथा मानविकी तथा अन्य विज्ञानों के साथ संबंध। पुरातत्व का मुख्य ध्येय भूगर्भ में छिपे हुए मनुष्य के भौतिक पुरावशेषों को उद्घाटित कर उसकी सभ्यता एवं संस्कृति पर प्रकाश डालना है। अपने साक्ष्यों के संकलन एवं उनकी व्याख्या के संबंध में पुरातत्व मानविकी एवं प्राकृतिक विज्ञानों से सहायता लेता है और इस प्रकार वह इन विषयों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। मानविकी के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नेतृत्व विज्ञान एवं समाजशास्त्र की गणना की जाती है, जबकि प्राकृतिक विज्ञान में भूतत्व विज्ञान, जियोलॉजी, भौतिक या फिजिक्स, रसायन या केमिस्ट्री, वनस्पति या बॉटनी तथा प्राणी विज्ञान या जूलॉजी सम्मिलित हैं। इन सभी का संबंध किसी न किसी प्रकार से पुरातत्व के साथ रहता है। जहाँ तक इतिहास का प्रश्न है, हम यह देखते हैं कि पुरातत्व का सर्वाधिक प्रामाणिक साधन है। इतिहास तथा पुरातत्व दोनों के केंद्र में मनुष्य होता है तथा दोनों अपने अपने ढंग से अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अभिलेख, सिक्कों तथा प्राचीन स्मारकों की खोज पुरातत्व द्वारा ही की गई है और इन सबके सहयोग से जिस इतिहास का पुनर्निर्माण किया जाता है वह काल्पनिक न होकर तथ्यात्मक होता है। भारत में लिखित साक्ष्य मिलने के पूर्व का इतिहास प्रधानतः पुरातत्व की सहायता से ही जाना जाता है। हमारी प्राचीनतम सिंधु सभ्यता एकमात्र पुरातत्व की ही देन है। प्रत्येक पुराविद के लिए इतिहास की जानकारी आवश्यक है ताकि वह प्राप्त सामग्रियों को काल विशेष अथवा घटना विशेष के साथ संयुक्त कर कोई निष्कर्ष प्रस्तुत कर सके। पर्याप्त इतिहास ज्ञान के बिना पुरातात्विक निष्कर्ष निकल सकना संभव नहीं है। वहीं दूसरी ओर पुरातत्व के बिना इतिहास का विवरण काल्पनिक ही रह जाता है। दोनों पद्धतियाँ एक दूसरे की पूरक हैं। उदाहरण के लिए बौद्ध ग्रंथ बुद्ध के समकालीन विभिन्न नगरों, शिल्पों आदि का उल्लेख करते हैं। दूसरी ओर पुरातात्विक उत्खनन से इसी काल के सिक्के, मोहरे आदि प्रकाश में आए हैं जो समृद्ध नगर जीवन की पुष्टि कर देते हैं। इस प्रकार बुद्धकालीन विकसित नगरीकरण साहित्य तथा पुरातत्व दोनों ही प्रमाणों से स्पष्टतः हो जाते हैं। अतः इतिहास तथा पुरातत्व परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अधिकांश विद्वान पुरातत्व को इतिहास की ही एक शाखा मानते हैं। इतिहास का भूगोल से घनिष्ठ संबंध होता है और इस प्रकार इतिहास की शाखा पुरातत्व भी भूगोल के साथ संबद्ध है। किसी भी देश के इतिहास और संस्कृति के ज्ञान के लिए भौगोलिक स्थिति पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। प्रकृति ने भारत को एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई प्रदान की है, फलस्वरूप वह अपनी स्वतंत्र संस्कृति का विकास कर सका है। प्रागैतिहासिक संस्कृति को विकसित करने के लिए भौगोलिक परिस्थितियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस काल की संस्कृति के अध्ययन के लिए वास्तु पुरातत्ववेत्ता को जलवायु, वातावरण तथा प्राकृतिक स्थिति का ज्ञान रखना आवश्यक है। प्राचीनतन काल में जो जलवायु संबंधित परिवर्तन हुए उसका ज्ञान तत्कालीन संस्कृति के अध्ययन के लिए आवश्यक है। उत्खननकर्ता को वनस्पति, जीव जंतु, पृथ्वी पर प्रवाहित होने वाली जल की मात्रा के विषय में जानकारी भी रखनी होती है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति के प्रागैतिहासिक स्वरूप की रचना में भूगोल का विशेष योगदान है। नृतत्व अथवा नृशास्त्र एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मनुष्य की शरीर संरचना, उसके समाज एवं संस्कृति, भाषा आदि का अध्ययन किया जाता है। आदिम जनजातियों एवं उसकी प्रथाएं नृतत्व के अध्ययन का प्रमुख क्षेत्र है। प्रागैतिहासिक पुरातत्व में भी इसी का अध्ययन किया जाता है। धीरेन्द्रनाथ मजूमदार के शब्दों में, वस्तुतः प्रागैतिहास नेतृत्व का वह अंग है जो उत्पत्ति के अध्ययन में रुचि रखता है। आदिमानव के कृतियों के अध्ययन द्वारा यह जैविक एवं सांस्कृतिक नेतृत्व के अटूट संबंध तथा संबंध पार्थक्य को पूर्ण रूप से विस्थापित करता है। साथ ही यह भी निश्चित करता है कि मानव जीवन की श्रेणियों और विभागों में नहीं रहा करता। समग्रता और बारंबारता इसके प्रमुख गुण हैं। इस प्रकार प्रागैतिहास नेतृत्व की समन्वयता की पुष्टि करता है। किंतु नृतत्व एवं पुरातत्व की अध्ययन पद्धति में कुछ मूलभूत अंतर भी हैं। पहली बात तो यह है कि नृतत्व में मानव समुदाय के अध्ययन पर बल दिया जाता है। इसके विपरीत पुरातत्व का विषय विलुप्त मानव समाज तथा मृत मानव है। दूसरी बात यह है कि नृतत्वविद मानव के विषय में ही अध्ययन करता है, जबकि पुराविद मानव के क्रियाकलापों, उपकरणों, औजारों, पुरावशेषों आदि का अध्ययन प्रमुख रूप से करता है। समाजशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र मानव समाज की रचना, रीति रिवाज, संस्कार एवं प्रथाएं आदि हैं। अतः प्राचीन युग की सामाजिक, परिवार, विवाह आदि एवं राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए पुरातत्ववेत्ता को समाजशास्त्र का ही सहारा लेना पड़ता है। इसके ज्ञान के बिना पुराविद इतिहास एवं संस्कृति का पुनर्निर्माण नहीं कर सकता। समाजशास्त्र से ही यह पता चलता है कि आदिम जातियों में मात्र सत्तात्मक परिवार एवं बहुपतित्व या पत्नित्व विवाह की प्रथा प्रचलित थी। इस प्रकार समाजशास्त्र तथा पुरातत्व भी घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। प्राकृतिक विज्ञानों में सर्वप्रथम भूतत्व विज्ञान जियोलॉजी का उल्लेख किया जा सकता है, जिसके साथ पुरातत्व घनिष्ठ रूप से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि मानव के उद्भव तथा विकास के विषय में प्रसिद्ध वैज्ञानिक डार्विन का सिद्धांत भूतात्विक अनुसंधानों का ही परिणाम था। पुरातत्व ने स्थिरीकरण स्ट्रेटिफिकेशन का सिद्धांत भूतत्व से ही ग्रहण किया है। भूतत्व वैज्ञानिकों ने ही सर्वप्रथम यह पता लगाया कि पृथ्वी के अंदर परतें होती हैं तथा नीचे की परतें ऊपरी परतों की अपेक्षा प्राचीन हैं। इसी आधार पर पुरातत्वविदों ने यह निष्कर्ष निकाला कि उत्खनन में ऊपरी सतह से प्राप्त सामग्रियां निचली सतह की सामग्रियों से कालक्रम की दृष्टि से बात की हैं। इसी प्रकार ऊपरी स्तर की सभ्यता के अवशेष निचले स्तर के अवशेषों के परिवर्तित सिद्ध किए जाते हैं। भूतात्विक जमाव के आधार पर ही मानव द्वारा बनाए गए पूर्व पाषाण काल के औजारों की प्राप्ति का अनुमान लगाया जाता है तथा जीवाश्मों फॉसिल्स का अध्ययन एवं उनकी तिथि निर्धारित की जा सकती है। साथ ही साथ औजार हथियार बनाने के लिए प्रयुक्त पाषाण खंडों एवं उनकी प्राप्ति स्थानों के विषय में भी भूतत्व की सहायता से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। भौतिक विज्ञान ऐतिहासिक पुरावशेषों के काल निर्धारण में पुरातत्व की मदद करता है। इसी के आधार पर अवशेषों अथवा घटनाओं की प्राचीनता सिद्ध की जाती है। पोटेशियम आर्गन के 40 या ए 40 तथा रेडियो कार्बन या सी 14 जैसा तत्वों के आधार पर विकसित पद्धति से पुरावस्तुओं के तिथि निर्धारण में काफ़ी सहायता प्राप्त हुई है। सी 14 तो काल गणना की एक प्रमाणिक पद्धति है। रेडियो कार्बन 2 विधि से 30-40 हजार वर्षों तक की तथा कुछ प्रयोगशालाओं की सहायता से 70-80 हजार वर्षों तक की तिथियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मैसूर, केरल आदि के मध्य पूर्व पाषाणिक स्तरों से लगभग 36 कार्बन तिथियां प्राप्त की गई हैं, जिनमें 6 उपकरणों से संबद्ध हैं। एच दानी ने सैखान ढेरी, जो पेशावर में स्थित है, के कुषाणकालीन अवशेषों की कार्बन तिथियां प्राप्त कर कनिष्क की तिथि को सुलझाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पुरातत्व का रसायन से भी संबंध है। पुरातात्विक स्थलों से जो अवशेष प्राप्त होते हैं उनमें से अधिकांशतः जैसे सिक्के आदि सिल्ट जंग आदि लगने के कारण धूमिल रहते हैं। इन्हें साफ करने के लिए रासायनिक विधियों का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ पुरावशेषों के संरक्षण एवं उनके रखरखाव के लिए भी रासायनिक तत्वों जैसे बेरियम, कैल्शियम सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि पदार्थ विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। काल गणना के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली विधियां कार्बन 14, क्लोरीन परीक्षा, ऑक्सीजन आइसोटोप विश्लेषण, पोटेशियम 40 विश्लेषण आदि रासायनिक विधियां ही हैं, जो तिथिक्रम के निर्धारण में अत्यधिक लाभदायक सिद्ध हुई हैं। पुरातत्व का मेरुदंड तिथिक्रम ही है और यह रसायन विज्ञान के ज्ञान के बिना संभव नहीं है। जहाँ तक वनस्पति शास्त्र का प्रश्न है, हम देखते हैं कि काल निर्धारण की कुछ विधियाँ जैसे पराग विश्लेषण, पॉलन एनालिसिस तथा वृक्ष वलय विश्लेषण, डेंड्रोक्रोनोलॉजी पुरातत्व ने इसी शास्त्र से ग्रहण किया है। पराग विश्लेषण विधि के अनुसार पौधों में जो फूल निकलते हैं उनमें पराग कण होते हैं। सामान्यतः ये नष्ट नहीं होते, बशर्ते कि वहाँ अम्लीय तत्व न हो। पराग युक्त बीजों के आधार पर वनस्पतियों के प्रसार तथा उनके समय की जलवायु के विषय में जाना जा सकता है। वृक्ष वलय विश्लेषण विधि के अनुसार परिवृक्षों को बीच से काटा जाए तो उनके कटे भाग पर गोल गोल छल्लों की तरह बने हुए चिन्ह दिखाई देते हैं। इसी को वलय या रिंग कहा जाता है। साधारण तौर से वृक्षों में एक वलय का निर्माण एक वर्ष में होता है। इन वलयों के आधार पर लकड़ी के किसी टुकड़े की तिथि निर्धारित की जा सकती है, किंतु यह विधि पूर्ण नहीं है क्योंकि सभी वृक्षों के वलय समसामयिक नहीं होते। जलवायु के अनुसार वृक्ष की आयु कम या अधिक हो सकती है। इस प्रकार इस विधि से निर्धारित तिथियों में अनिश्चितता विद्यमान रहती है। प्राणी विज्ञान की एक शाखा पूरा प्राण विज्ञान है। पैलेंटोलॉजी का पुरातात्विक तिथि निर्धारण में सहायता लेता है। इसमें जीवाश्मों का अध्ययन कर तिथि गणना की जाती है। यह ज्ञान पुरातत्ववेत्ता के लिए आवश्यक है। इसी का सहारा लेते हुए पुरातत्ववेत्ता हाथी, घोड़े एवं अन्य पशुओं के जीवाश्मों के आधार पर प्रातिनूतन अथवा अतिनूतन काल में पृथकता स्थापित करते हैं। अतीत की प्राकृतिक अवस्था तथा जलवायु के विषय में पुरातविदों को पुराप्राणविदों के निष्कर्षों पर ही निर्भर करना पड़ता है। प्राण विज्ञान के काल से ही मनुष्य खाद्य अखाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार पुरातत्व मानव की एवं प्राकृतिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के साथ किसी न किसी रूप में संबंधित है। पुरातात्विक निष्कर्ष तभी पूर्ण होगा जब इन विविध विषयों का सहारा लिया जाए।